ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रूस रवाना होंगे। श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त करना है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कजान में हमारे संवाददाता को बताया कि ये शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ये ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन करेगा। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से सभी गतिविधियों में शामिल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को मिला है, उत्तर प्रदेश को द्वितीय और गुजरात तथा पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 और राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड स्तर से पहले मुख्य महाप्रबंधक पद CGM के सृजन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक शामिल है। वित्त मंत्री ने उन बैंकों में मौजूदा मुख्य महाप्रबंधकों की संख्या में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी जहां पहले से ही ये पद मौजूद हैं। इस संशोधन के बाद सभी 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल मुख्य महाप्रबंधक पदों की संख्या 80 से बढ़कर 144 हो गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस महीने 1,000 करोड़ रुपए की बिक्री करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि लोगों के सस्ते तथा गुणवत्तापूर्ण दवाओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्ष 2014 तक केवल 80 जन औषधि केंद्र थे जो इस वर्ष बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले महीने 200 करोड़ रुपए की दवाएं बेची थी। अगले दो वर्षों में इन केंद्रों की संख्या 25,000 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने केरल के करियावट्टूम में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCPE में 300 बिस्तर वाले लड़कियों के हॉस्टल का उद्घाटन किया है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण की शैक्षणिक शाखा है। सोशल मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं को खेल के माध्यम से सशक्त करने की दूरदर्शिता का प्रमाण है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्टल युवा महिला खिलाड़ियों को उनके विकास और सफलता के लिए बेहतरीन संसाधन प्रदान करेगा। भीषण चक्रवाती तूफान दाना के इस महीने की 24 तारीख की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। इस बीच ओडिशा सरकार तटीय जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए चक्रवात प्रभावित जिलों में जाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक अधिकांश तटीय जिलों और भीतरी ओडिशा के कुछ जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेप 2 आज सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। ये निर्णय नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति की बैठक के दौरान लिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।